आज है 21 दिसंबर दिन बुधवार। स्वागत है आपका नमस्कार भारत में। मैं हूं सुशीला सिंह। जर्मनी के क्रिसमस बाजार में लॉरी हमले की आईएस ने ली जिम्मेदारी।
Diese angebliche Bekennung des sogenannten islamischen Staates ist in Wahrheit ja
eine मणिपुर में मैतई और नागा लोगों में तनाव को लेकर कर्फ्यू जारी। टेक्सटाइल का गढ़ माने जाने वाले सूरत में यूपी और बिहार के कामगार नोटबंदी से हैं परेशान।
पुरन के नोट मिलता है, पुरनका नोट कोई लेने के लिए तैयार नहीं है और बहुत भुखमरी की समस्या आ गई है। पैसा के चलते पहुंचा दिए, चार परिवार थे तो चार परिवार कहां से भोजन भाजन ले आते चलाने के लिए। हम तो किसी तरह से मरिए रहे।
पूर्व सोवियत संघ के विघटन पर सुनेंगे विशेष रिपोर्ट, होंगी समाचार पत्रों की समीक्षा भी, लेकिन पहले सुन लेते हैं मुख्य समाचार।
बीबीसी समाचार हरिता कांडपाल से। जर्मनी की राजधानी बर्लिन में एक क्रिसमस बाजार पर सोमवार रात को हुए हमले की जिम्मेदारी चरमपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट ने ली है। हालांकि जर्मनी के आंतरिक मंत्री ने इसे अहमियत न देते हुए कहा कि इस घटना की कई पहलुओं की जांच हो रही है। जर्मनी में इस हमले के बाद अन्य शहरों में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। ब्रिटेन में लंदन, अमरीका में न्यूयॉर्क के कई पर्यटक स्थलों और कनाडा के दो बड़े शहरों टोरंटो और मॉन्ट्रियल में क्रिसमस के लिए सजे बाजारों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मेक्सिको में पटाखों के सबसे लोकप्रिय बाजार में सिलसिलेवार हुए कई धमाकों में कम से कम 26 लोगों की मौत हो गई है। मेक्सिको में अधिकारियों ने इसकी पुष्टि की है। ये बाजार मेक्सिको सिटी के बाहरी इलाके में स्थित है। स्थानीय पुलिस ने कहा है कि इन विस्फोटों में कई लोग घायल भी हुए हैं। स्थानीय टीवी चैनलों पर दिखाए गए फुटेज में काफी नाटकीय दृश्य सामने आ रहा है, जिसमें धुआं फैला नजर आ रहा है। जॉर्डन के सरकारी मीडिया ने कहा है कि कारक शहर में सुरक्षा बलों और संदिग्ध चरमपंथियों के बीच गोलीबारी में चार पुलिस अधिकारियों की मौत हो गई है। एक सरकारी प्रवक्ता मोहम्मद मोमानी ने कहा कि एक मकान पर मारे गए छापे के बाद मुठभेड़ शुरू हुई थी। इस मकान में संदिग्ध इस्लामिक चरमपंथियों के छुपे होने की खबर पुलिस को मिली थी, जिसके बाद छापा मारा गया था। मोहम्मद मोमानी ने ये कहा। कारक के किले पर कब्जा करने वाले आतंकी सेल से जुड़े एक संदिग्ध की पहचान की गई थी, जिसकी हमें तलाश थी। उसे बुलाया गया था, उसने मान लिया कि वो इस आतंकी सेल से जुड़ा हुआ था। उसके घर में कई हथियार भी रखे हुए थे। ये थे मोहम्मद मोमानी के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। उत्तरी इराक में सुरक्षा अधिकारियों ने कहा है कि ईरानी कुर्द विद्रोही गुट के एक दफ्तर में बम धमाके में कम से कम 6 लोगों की मौत हो गई है। ये धमाका कोई संजक शहर में डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ ईरानियन कुर्दिस्तान के दफ्तर पर हुआ है। इस प्रांत के उप आंतरिक मंत्री जलाल करीम ने कहा कि कई लोग इस धमाके में घायल भी हुए हैं। क्राइमिया पर कब्जा और यूक्रेन में दखलंदाजी करने वाले रूस पर अमरीका ने प्रतिबंधों को बढ़ा दिया है। अमरीकी वित्त मंत्रालय ने नए आर्थिक प्रतिबंध 7 रूसी बैंकरों और व्यापारियों पर लगाए हैं। इनमें वो कंपनियां भी शामिल हैं जो यूक्रेन में सक्रिय हैं। अमरीकी वित्त मंत्रालय के मुताबिक ये प्रतिबंध इसके सूचक हैं कि अमरीका क्राइमिया पर रूस के कब्जे को मान्यता नहीं देता। रूस ने कहा है कि आर्थिक प्रतिबंध ओबामा प्रशासन की तरफ से की गई शत्रुतापूर्ण कार्रवाई है और इसका जवाब दिया जाएगा। सोमवार को यूरोपीय संघ ने भी रूस पर लगे प्रतिबंध 6 महीने के लिए बढ़ा दिए थे। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने इस बारे में ये कहा।
This decision by the Treasury Department had nothing to do with the time on the clock.
वित्त विभाग के इस फैसले का समय से कोई लेना देना नहीं है। इसका संबंध यूक्रेन के अलगाववादियों के लिए रूस के समर्थन और क्राइमिया पर उसके कब्जे से है। इस फैसले का संबंध रूस की गतिविधियों से है। यूक्रेन की संप्रभुता और एकता के उल्लंघन करने के लिए रूस की जिम्मेदारी तय करना जरूरी था। ये थे जॉन किर्बी के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। पाकिस्तान की संसद के ऊपरी सदन सीनेट ने 5,000 रुपए के पुराने नोट को बंद करने की सिफारिश की है। भ्रष्टाचार खत्म करने और लोगों को टैक्स भरने के लिए प्रेरित करने के मकसद से ये सिफारिश की गई है। हालांकि सरकार इसे मानने के लिए बाध्य नहीं है। इस प्रस्ताव का विरोध कर रहे पाकिस्तान के कानून मंत्री जाहिद हामिद ने कहा कि 5,000 रुपए का नोट बंद करने से पाकिस्तान में अफरा तफरी मच जाएगी। बीबीसी समाचार।
आप सुन रहे हैं नमस्कार भारत लाइव रेडियो bbchindi.com और अपने मोबाइल पर सुशीला सिंह के साथ। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं मेक्सिको से, जहां पटाखों के बाजार में सिलसिलेवार हुए धमाकों में कम 26 लोगों की मौत हो गई है और कई घायल बताए जा रहे हैं। पूरी जानकारी के साथ लाइव स्टूडियो में हरिता कांडपाल। हरिता,
मेक्सिको की राजधानी मेक्सिको सिटी के बाहरी इलाके में पटाखों का सबसे लोकप्रिय बाजार स्थित है और वहां पर एक दुकान में आग लगने के बाद सिलसिलेवार कई धमाके हुए हैं और कम से कम इसमें 26 लोगों की मौत की खबर आ रही है। मेक्सिको में अधिकारियों ने इसकी पुष्टि कर दी है कि इतने लोगों की मौत हुई है। ये बाजार मेक्सिको सिटी के बाहरी इलाके में स्थित है और स्थानीय पुलिस ने कहा है कि इन विस्फोटों में 60 अन्य लोग घायल हुए हैं। स्थानीय टीवी चैनलों पर इस घटना के फुटेज को भी दिखाया जा रहा है, जिसमें काफ़ी नाटकीय दृश्य दिखाया जा रहा है। खुले आसमान के नीचे ये बाजार लगता है। सैन पाब्लिटो नाम के इस बाजार में पहली दुकान में आग लगी और उसके बाद कई दुकानों में जो है धमाके होने लगे। चारों तरफ इन तस्वीरों में धुआं फैला नजर आ रहा है और लोगों में अफरा तफरी मची हुई है। आपात सेवा की टीमें मौके पर पहुंचाई गई हैं। मेक्सिको स्टेट रेड क्रॉस ने कहा है कि करीब 25 एम्बुलेंस को मौके पर रवाना कर दिया गया है। वहीं राष्ट्रीय नागरिक बचाव के संयोजक लुई फेलिप पुएंटा ने स्थानीय लोगों से सड़कों को खाली रखने को कहा है ताकि आपात सेवा की टीमों और एम्बुलेंसों को घटनास्थल पर पहुंचने देरी ना हो। वहीं राज्य के गवर्नर एरुविल अवेला ने कहा कि घायलों को बचाना पहली प्राथमिकता है और इससे पहले 2005 और 2006 में भी आग लगने से इस बाजार में काफी नुकसान हुआ था।
जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए हरिता कांडपाल आपका। इधर जर्मनी की क्रिसमस बाजार में लॉरी से हमला करने की जिम्मेदारी तथाकथित इस्लामिक स्टेट ने ली है। इससे पहले जर्मन पुलिस का कहना था कि इस हमले में गिरफ्तार किए गए संदिग्ध पाकिस्तानी को सबूतों के अभाव में छोड़ दिया गया है। इस हमले में कम से कम 12 लोगों की मौत हो गई थी और करीब 50 लोग घायल हुए थे। जर्मनी के आंतरिक मंत्री का कहना है कि जब तक इस हमले के जिम्मेदार व्यक्ति को पकड़ नहीं लिया जाता है, जांचकर्ता शांत नहीं बैठेंगे। पूरे ब्यौरे के साथ एक बार फिर हरिता कांडपाल।
तथाकथित इस्लामिक स्टेट ने जर्मनी की राजधानी बर्लिन के क्रिसमस बाजार पर सोमवार रात को हुए हमले की जिम्मेदारी ली है। आईएस से जुड़ी अमाक न्यूज एजेंसी के मुताबिक इस्लामिक स्टेट ने कहा है कि उसके एक लड़ाके ने बर्लिन के क्रिसमस बाजार पर लॉरी से हमला किया है। इस हमले में 12 लोगों की मौत हो गई थी और करीब 50 लोग घायल हुए थे। आईएस का दावा है कि गठबंधन सेना में शामिल देशों के नागरिकों पर हमले की अपील पर उसके सैनिक ने यह हमला किया है। वहीं जर्मनी के आंतरिक मंत्री थॉमस डेमेजेर ने आईएस के दावे को ज्यादा तरजीह नहीं दी है। टीवी पर प्रसारित एक बयान में उन्होंने कहा,
Diese angebliche Bekennung des sogenannten islamischen Staates ist in Wahrheit ja eine Terrorbande.
कथित तौर पर इस्लामिक स्टेट ने जो जिम्मेदारी ली है वो असल में और कुछ नहीं बल्कि आतंकवादियों का एक गिरोह है जो अभी अभी सामने आया है। इससे पहले कोई दावा नहीं किया गया था। कई पहलुओं पर जांच हो रही है। हमें सुरक्षा एजेंसियों को उनका काम करने देना चाहिए। वो तब तक शांत नहीं बैठेंगे जब तक वो इसके लिए जिम्मेदार व्यक्ति या लोगों को गिरफ्तार नहीं कर लेते। थॉमस डेमेजेर के शब्द। इससे पहले जर्मनी के अधिकारियों ने लॉरी दौड़ाने के आरोप में हिरासत में लिए गए संदिग्ध को छोड़ दिया था। जर्मन अधिकारियों का कहना है कि उसके खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं मिले हैं। मीडिया में इस शख्स की पहचान पाकिस्तानी नागरिक नावेद बलोच के तौर पर की जा रही है। उधर ट्रक हमले में मारे गए लोगों की याद में बर्लिन के क्रिसमस बाजार के पास कायसर विल्हेम मेमोरियल चर्च में एक शोक सभा रखी गई। इसमें जर्मन चांसलर एंगेला मर्केल और अन्य नेता शामिल हुए। एंगेला मर्केल ने कहा कि इस हमले के लिए जिम्मेदार लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। एंगेला मर्केल के लिए बर्लिन में ट्रक हमला राजनीतिक मुसीबत का सबब बन सकता है और इसका फायदा उनकी प्रतिद्वंद्वी दक्षिणपंथी एएफटी पार्टी को होगा। अगर इस हमले के पीछे किसी शरणार्थी का हाथ पाया गया तो एंगेला मर्केल पर दबाव बढ़ सकता है, क्योंकि सीरिया, इराक और अफगानिस्तान से आने वाले लाखों शरणार्थियों के लिए उनकी खुले दरवाजे की नीति की जर्मनी में कड़ी आलोचना हुई है। बर्लिन में क्रिसमस बाजार पर हमले के बाद रूस ने भी सुरक्षा बढ़ाने का ऐलान किया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक टीवी संदेश में कहा,
Напоминаем еще раз.
हम पहले की तरह फिर से अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से लड़ाई के हमारे प्रयास से जुड़ने का प्रस्ताव आपको दे रहे हैं। हम सुरक्षा एजेंसियों से रूस के अंदर और बाहर सुरक्षा बढ़ाने को कह रहे हैं। व्लादिमीर पुतिन के शब्द। बर्लिन में क्रिसमस बाजार पर ट्रक दौड़ाने की घटना ने बास्टिल डे परेड के दौरान फ्रांस के नीस शहर में भीड़ पर ट्रक हमले की घटना की याद ताजा कर दी है। इस हमले की जिम्मेदारी भी आईएस ने ली थी।
ये थी हरिता कांडपाल। मध्यपुर में क्रिसमस के दिनों में जर्मनी के क्रिसमस बाजार में चहल पहल खासी बढ़ जाती है। यहाँ के स्थानीय कारोबारी इस महीने का बेसब्री से इंतजार करते हैं और महीनों पहले से पर्यटकों को बेचने के लिए काफी सामग्री बनाते हैं। हर साल क्रिसमस के मौके पर यहाँ यूरोप से लाखों लोग पहुँचते हैं। बीबीसी उर्दू सेवा के सहयोगी जावेद सुमरो बर्लिन पहुँच चुके हैं। मैंने उनसे पूछा कि अब यहाँ के ताज़ा सूरत हाल क्या है।
यहाँ पर ऐसा है कि जाहिर है कि ये कल इतना बड़ा वाकया हुआ है यहाँ पे जो ये क्रिसमस बाजार था और ये बहुत ही सजा हुआ बहुत ही खूबसूरत एरिया है, काफी पॉश एरिया है, वहाँ पर ये वाकया हुआ है। तो लोग बहुत दुखी मिले हैं। जब मैं आ रहा था तो रास्ते में मेरी एक दो लोगों से बात हुई और टैक्सी ड्राइवर से बात हुई, कुछ वहाँ पे जब हम पहुँचे तो वहाँ पे लोगों से बात हुई, वहाँ पे एक तरह से सबने कैंडल्स जला के और शमे जला के एक तरह से जैसे मेमोरियल बना लिया, एक तरह से जैसे मजार बन गया है और वहाँ पे लोग फूल ला रहे हैं, वहाँ पे लोग जो हैं वो शमे जला रहे हैं, कैंडल्स जला रहे हैं। तो बात करते हुए लोगों ने बताया कि उनको बहुत दुख हुआ है और उन्होंने कहा कि हालांकि ये जो रेफ्यूजीज हैं उन पर इल्ज़ाम है, लेकिन हम समझते हैं, लोगों ने कहा कि सारे रेफ्यूजीज नहीं होंगे लेकिन उनमें कुछ ऐसे आतंकवादी घुस आए हैं जिनका मुकाबला करना बहुत ज़रूरी है और जिनको पकड़ना बहुत ज़रूरी है वरना इस मुल्क के लिए ख़तरा हो सकता है। तो एक सूरत हाल ऐसी है कि लोग घबराए हुए भी हैं लेकिन वो ये भी नहीं चाहते कि सारे लोगों पर शक किया जाए और बगैर किसी सबूत पे किसी को इल्ज़ाम लगाया जाए।
जी, और अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो क्या अब वहाँ पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है क्योंकि क्रिसमस का त्यौहार भी नज़दीक है?
जी बिल्कुल, जो क्रिसमस की वजह से यहाँ पे सिक्योरिटी वैसे भी बहुत ज़्यादा थी लेकिन कल के इस वाक़े के बाद बहुत ज़्यादा पुलिस की गाड़ियाँ हैं हर मेन चौराहे पर, एक हर एक राउंड अबाउट पे आपको पुलिस की गाड़ियाँ नज़र आती हैं, एम्बुलेंसेज मौजूद हैं और इस पूरे एरिया को जो बहुत ही सेंट्रल एरिया है बर्लिन का, उस जहाँ पे ये वाकया हुआ है उसके तकरीबन दो तीन सड़कों पे उसके चारों तरफ पुलिस है और सारी ट्रैफिक वहाँ पे बंद है। जैसे उसको क्राइम सीन के तौर पे ट्रीट किया जा रहा है और जो डिटेक्टिव्स हैं जो यहाँ पे पुलिस के ऑफिसर्स हैं वो बहुत ही बारीक बीनी से हर चीज़ का जायज़ा ले रहे हैं और इस पूरे इलाके में खासी पुलिस की नफरी और सिविलियन ड्रेस में जो इंटेलिजेंस के लोग हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं।
जी, जिस संदिग्ध पाकिस्तानी को गिरफ्तार किया गया था, हिरासत में लिया गया था, उसे छोड़ दिया गया है सबूतों के अभाव में, लेकिन क्या आपको इस बारे में कोई जानकारी मिल पाई है ये व्यक्ति कौन है?
देखिए, पुलिस ये बता रही है कि हमने उस बंदे को, उस व्यक्ति को छोड़ दिया है जिसका नाम नवीद बलोच बताया जा रहा है और जिसका पाकिस्तान के पंजगूर के इलाके से ताल्लुक था। लेकिन मेरी अब से ज़रा देर पहले नवीद बलोच के दो दोस्तों से बात हुई है टेलीफोन पे और वो ये कह रहे हैं कि अभी तक उनका नवीद के साथ रابطہ नहीं हो सका, कोई से बात नहीं हो सकी। वो ये बता रहे थे कि उसका फ़ोन बंद है और वो उसके कैंप पे भी गए थे जहाँ पे, जिस कैंप में उसको रखा गया है असाइलम सीकर्स के तौर पे, वहाँ पे भी वो मौजूद नहीं था। तो वो कह रहे थे कि बहुत परेशान है और नवीद का कोई अभी तक अता पता मालूम नहीं हो रहा कि वो कहाँ है और किस हाल में है। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि पुलिस से जब उनकी बात हुई नवीद के दोस्तों की तो पुलिस कह रही है कि हमने उसको छोड़ दिया है, अब हमें पता नहीं कि वो कहाँ है।
नवीद बलोच के बारे में उनके दोस्तों को भी नहीं मिल पा रही है जानकारी। ये थे बर्लिन से जावेद सुमरो। जर्मनी की चांसलर एंगला मर्कल ने ओपन डोर पॉलिसी के तहत करीब 10 लाख शरणार्थियों को आने की अनुमति दी थी जिससे उनकी काफ़ी सराहना भी की गई थी, लेकिन बाद में जो हालात पैदा हुए उसके बाद इसकी आलोचना होनी शुरू हो गई। बीबीसी उर्दू की आलिया नजगी ने जर्मनी के शरणार्थियों पर काम करने वाले टॉम वाइकर्ट से बात की।
جرمنی میں ریفیوجی کرائسس سے پہلے سے ہی شاید 2-3 سال پہلے ماحول چینج ہوا گیا ہے. وہ ریسس فیلنگز ہے آج کل, اور ریفیوجی کرائسس کے وجہ سے یہ بڑھا ہے اور بڑھ گیا. اور ایک اور انسیڈنٹ ویسے کل کا برلن کا, ویسے 3-4 مہینے پہلے میونک کا تھا, اور یہ ایک اور ہے جرمنی کے کیپیٹل میں. یہ جرمنی کا ماحول اور لوگوں کا وہ ریسزم میرے خیال سے بڑھتا ہے, اور یہ بالکل مشکل ہے اور ٹھیک نہیں ہے.
اچھا, آپ خود ریفیوجیز کے ساتھ ٹرانسلیٹر کے طور پر کام کرتے رہے ہیں, زیادہ تر ان میں سے مصیبت زدہ لوگ ہوتے ہیں, ان پر اس صورتحال کا کیا اثر پڑے گا؟
میرے خیال سے وہ ریفیوجیز کے عام طور پہ آج کل جرمنی میں ماحول اور حالت بالکل مشکل ہیں, کیونکہ بہت جرمن لوگ ان کے ویسے بری نظر سے دیکھتے ہیں اور بری طرح سے سوچتے ہیں فورنرز کے بارے میں اور ریفیوجیز کے بارے میں بھی. تو ایک حملہ کل جیسے کا ہم سب کے لیے ٹھیک نہیں ہے. وہ ریفیوجیز کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ بہت جرمن ان کو بری نظر سے دیکھتے ہیں, اور ہمارے لیے خود جرمن کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ ہمارا سوسائٹی جو ہے وہ آج کل وہ سپلٹ ہو گیا ہے.
اچھا, اور اینگلا مرکل نے کہا کہ پورا جرمنی اس وقت یونائٹڈ ہے, متحد ہے, کیا واقعی ایسا ہے؟
نہیں, متحد نہیں ہے, بالکل نہیں ہے. شاید اگر آپ نے وہ جرمن پالیٹکس فالو کیا ہے پچھلے سال میں, ہمارا ایک رائٹ ونگ پارٹی جو ہے AFD 1-2 سال سے بہت اسٹرانگ ہو گیا ہے, اور ہم یونائٹڈ بالکل نہیں ہیں.
جرمنی میں شرنارتھیوں کو لے کر کام کرنے والے ٹام وائکٹ سے بات کری تھی آلیا نز کی. آپ سن رہے ہیں نمسکار بھارت, سشیلا سنگھ کے ساتھ. منی پور کے کئی علاقوں میں پچھلے رویوار سے متئی اور ناگا لوگوں میں تناؤ کو لے کر کرفیو جاری ہے. معاملے کی شروعات جب ہوئی جب مکھیہ منتری اوکرام ایبوبی سنگھ نے 7 نئے ضلع بنانے کا اعلان کیا. یہ ضلع ان علاقوں میں آتے تھے جنہیں ناگا کتھت رہت ناگالم کا حصہ مانتے ہیں. کرفیو اور تناؤ کی وجہ سے عام ضرورت کی چیزوں کے دام آسمان چھو رہے ہیں, اور انٹرنیٹ سیوا بند ہونے کی وجہ سے لوگوں کی سمسیا اور بڑھ گئی ہے. تازہ حالات کی جانکاری کے لیے ہمارے سہیوگی امریش دیویدی نے امفال میں اخبار اسٹیٹسمین کے وشیش سنواددتا MBM لابا سے بات کی.
حالت بہتر ہو رہا ہے اور سدھر رہا ہے دھیرے دھیرے سے. اسی کے کارن ضلع کے 2 مجسٹریٹ نے, مانے امفال ایسٹ اور ویسٹ کے مجسٹریٹ نے, صبح کے 9:30 بجے سے شام کے 6:30 بجے تک کرفیو کو اٹھا دیا ہے. لیکن رات کے سمے میں دونوں ضلع پہ ابھی تک کرفیو چل رہا ہے, اور بیچ میں سارس راجیہ میں, منی پور پورا راجیہ میں پورا انٹرنیٹ کو شٹ ڈاؤن کیا ہے سرکار نے. تو اسی کے کارن منی پور میں جو آدمی رہتے ہیں لوگ, ان کو فیس بک, انٹرنیٹ, ای میل وغیرہ, واٹس ایپ, سب کو ان کی سویدھا نہیں مل رہا ہے. یہ تک 25 تک چلے جائے گا بولتا ہے کہ یہ شٹ ڈاؤن. ایک گاڑی کو جلانے کا کوئی خبر نہیں ہے, لیکن 5-6 گاڑی کو پتھروں کی خبر مل رہا ہے وہ سگما ایریا میں, نیشنل ہائی وے 39
میں. ایم ایم جی, یہ بتائیے کہ انٹرنیٹ کے بند ہونے کی وجہ سے لوگوں کو, عام لوگوں کو سرکار نے نوٹ بندی کیا ہے, ڈی مونیٹائز کیا ہے 500 اور 1000 کا نوٹ, اس کی وجہ سے کیا کیا سمسیاں جھیلنی پڑ رہی ہیں؟ عام لوگوں کی ضرورت کی چیزوں کے دام کس سطر پہ پہنچ گئے ہیں؟
ایک ڈی مونیٹائزیشن ہونے کے بعد عام آدمی کے ساتھ میں وہ پرچیسنگ پاور جو ہے ابھی خریدنے کا ان کا سویدھا بہت کم ہو گیا تھا, کہ اوپر میں وہ پیٹرول کا دام 1 لیٹر میں 350 روپیہ میں بھر گیا ہے, آلو کا دام 100 روپیہ اور پیاز کا دام 200 روپیہ بھر گیا ہے. تو آدمی کا حال بہت گمبھیر تھا, کیونکہ ایک تو پیسہ ہے نہیں, دوسرے تو تھوڑا پیسہ ہے لیکن چیزوں کو خریدنے کے دام بہت زیادہ ہے, کیونکہ اس کے بلاکیج کے کارن میں پیٹرول نہیں آ رہا تھا, LPG کے سلینڈر 2000 میں بھیج رہا ہے بلیک میں, تو ایسا ہی ہو رہا ہے. اور دوائی وغیرہ بھی تھوڑا شارٹیج ہے, اس میں ہاسپٹل میں لائف سیونگ ڈرگ کا بھی شارٹیج ہو گیا ہوگا, اور بیبی فوڈ کا بھی بہت شارٹیج ہو گیا ہے.
ایم ایم لابا جی, یہ بتائیے کہ اس پوری سمسیا کی, ناگاؤں اور میتے کے بیچ جو سمسیا ہے موجودہ, اس کی شروعات کیسے ہوئی, ہنسا کی شروعات کیسے ہوئی؟
ہنسا کی شروعات تو ناگا اور میتے کے ساتھ نہیں تھا, کیونکہ وہ ناگا لوگ نیا ڈسٹرکٹ سناپتی جو ہے, ڈسٹرکٹ جو ہے ناگا ڈومینیٹڈ ایریا ہے, اس میں ایک سردار ہل ڈسٹرکٹ بنانے کے لیے چکر میں ابھی قریباً 10 سال سے پہلے وہ اپوز کر رہا تھا, اور وہ بی جی نے کیا, وہ منسٹر وہ بھی نے کیا کیا تھا, ان کی اپوزیشن میں انہوں نے صرف سردار ہل ڈسٹرکٹ کو نہیں بنانا, دوسرے نام ڈال کر کے کانپور بھی ڈسٹرکٹ بن گیا ہے, اور دوسرے تو ترنوپل ڈسٹرکٹ بن گیا, اور 5 پورا 7 ڈسٹرکٹ نیا بن گیا تھا. तो इसलिए वो नागा लोग बोलता है ये कि नागा एरिया को कुकी को जगह देने के लिए डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी में वो भी और मणिपुर सरकार ने कर रहा है। इसी के कारण में इन लोग ने मणिपुर सरकार को मैत्री सरकार करके वो इकोनॉमिक ब्लॉकेड 1 नवंबर तारीख से शुरू किया था, अभी तक तो करीबन 2 महीने होना ही है।
अगले साल चुनाव होने वाले हैं विधानसभा के, उससे पहले 7 जिले बनाकर मुख्यमंत्री ओकराम इबोबी सिंह ने क्या हासिल करने की कोशिश किया है? क्या ये कोई राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश थी या फिर उन्होंने कोई सोच समझकर कार्रवाई नहीं की इस वजह से ऐसी समस्या पैदा हुई?
ये तो पूरा राजनीतिक है, वो चुनाव हो रहा है इसलिए, क्योंकि पहले तो कुकी वोट भी नहीं मिल रहा था और नागा वोट भी नहीं मिल रहा था, लेकिन 2 जगह पे नागा नया डिस्ट्रिक्ट बन गया, उसी नागा लोग कांग्रेस में वोट दे देगा जरूर, और कुकी लोग जो पहले सरदार हिल डिस्ट्रिक्ट वगैरह नहीं बनाने के लिए वो बोल रहा था कांग्रेस छोड़ रहा है हम, वो फिर वापस आ गया है।
ये थे मणिपुर से पत्रकार MM लामा। पिछले 60 वर्षों से गुजरात के सूरत शहर को भारत में टेक्सटाइल की खान माना जाता है। टेक्सटाइल से ही जुड़ा है इस शहर का पावरलूम सेक्टर, जिसमें करीब 7 लाख छोटी फैक्ट्रियां सूरत और आसपास के इलाकों में हैं। इन यूनिटों में काम करने वाले मजदूर ज़्यादातर बिहार या उत्तर प्रदेश से हैं और नोटबंदी के बाद से काफ़ी बेरोजगार भी रहते हैं। BBC संवाददाता नितिन श्रीवास्तव पांडसेरा के एक इंडस्ट्रियल एरिया में इसी की पड़ताल के लिए पहुंचे।
पावरलूम यानी बुनकर जो सेक्टर है, उसमें हजारों लोग बाहर से, लाखों लोग काम करने आते हैं, ज्यादातर यूपी से आते हैं, बिहार से आते हैं, और ये गणेश नगर ऐसा ही इलाका है जहां पर ये लोग रह रहे हैं, सालों से रह रहे हैं। आप बताइए क्या करते हैं यहां पर, कब से रह रहे हैं?
हम संचा चलाते हैं यहां, करीब हो गए हमको 30 साल रहते।
क्या नाम है आपका, कहां के रहने वाले?
छेदालाल नाम है, फतेहपुर के रहने वाले हैं, जिला फतेहपुर है।
फतेहपुर यूपी के रहने वाले?
हाँ, यूपी के रहने।
काम क्या करते हैं आप? अभी जो ये 8 नवंबर के बाद से जो घोषणा हुई है, इसके बाद से कैसा चल रहा है, जिंदगी कैसी चल रही है?
अरे चल क्या रहा है, 4 दिन चलता है, 4 दिन बंद रहता है, पैसा भी नहीं मिलता है बराबर। बैंक में जाओ तो वहाँ 4 दिन 5 दिन लाइन लगाना पड़ता है, वो भी नहीं मिलता है, और 4 खाड़ा अलग से होता है।
हमें यहाँ पर जो तमाम सरकारी अफसर है जो और जो एसोसिएशन के लोग हैं, उनके मुताबिक 35-40% इस वक्त टेक्सटाइल का जो प्रोडक्शन है सूरत और उसके आसपास के इलाकों में वो हो रहा है। करीब 60% के आसपास का प्रोडक्शन इफेक्ट हुआ है, लेकिन ये वो बस्ती है, ये वो इलाका है जहाँ पर वही लोग हैं जो लाखों की तादाद में हैं और यहाँ पर इन्हीं के चलते प्रोडक्शन हो पाता है। आइए आपसे बात करते हैं, आप कहाँ के रहने वाले हैं, आप गुजरात में कब से हैं?
मेरे को 15-16 साल हो गया और मैं बिहार से हूँ।
क्या करते हैं आप गुजरात में, सूरत में क्या करते हैं?
मैं टैक्सी चलाता हूँ।
आप टैक्सी चलाते हैं?
टैक्सी चलाता।
नोटबंदी जब से हुई है तब से क्या इफेक्ट हुआ है?
बहुत इफेक्ट हुआ है, हमको काम नहीं मिलता है और कोई कस्टमर आता है तो बोलता है हमारे पास पैसा नहीं है, चेक लेके जाओ। और
बिहार में कहाँ के हैं आप?
बिहार में पश्चिमी चंपारण के रहने वाला हूँ।
यानी कि पावर लूम के साथ साथ टैक्सी वालों पर भी असर है, लेकिन अभी हम यहाँ पर जिस कॉलोनी में है, आप बताइए कहाँ के हैं, यहाँ पर कब से रह रहे हैं?
हम सर अरवल जिला के रहने वाले हैं।
कहाँ के?
अरवल जिला, जहानाबाद से टूट के अरवल हुआ।
हाँ।
यहाँ हो गया 8 साल। ये कंपनी में काम करते हैं, डाइंग पेंटिंग में काम करते हैं।
डाइंग पेंटिंग का काम करते हैं, यानी हाथ से बुनकरी में जो काम है। हाँ, उसमें आप मदद हाँ, करते हैं।
मशीन से निकलता है,
मशीन से निकलता है। जब हाँ, से ये दिक्कत हुई है, इसके बाद से
बहुत
आपको तनख्वाह उनका मिली है?
मिला है सर, बाकी पुरनके नोट मिलता है, पुरनका नोट कोई लेने के लिए तैयार नहीं है, और इसलिए बहुत भुखमरी की समस्या आ गया।
तो पुराना नोट मिलता है तो काम कैसे चल रहा है? बैंक तो पुराना नोट एक अमाउंट तक ही लेता है ना, उसके बाद तो बैंक मना कर
दूसरे की खाता है, जिसके खाता पर डलवा करके 100-150 निकाल करके 200-400 निकाल करके दे रहा है। इसी तरह
परिवार आपका यहाँ पर है कि जहानाबाद में?
घर पर है
परिवार, घर पर है।
यही पैसा के चलते पहुंचा दिए,
पैसे के चलते पहुंचा दिया परिवार।
क्या करे सर,
कब पहुंचाया परिवार को?
पहुंचाए अगले महीना में 15-16 तारीख के पहुंचा दिए।
15-16 को आपने परिवार को घर पहुंचा दिया,
तो क्या करे, हम तो किसी तरह से मरिए रहे, तो वो कैसे मरेगा? 4 परिवार थे तो 4 परिवार कहाँ से भोजन भाजन ले आते चलाने के लिए।
तो क्या दिक्कत क्या है आपको?
दिक्कत है कि पैसा है नहीं, अभी भी नहीं है, 10 रुपया भी नहीं है अभी, बताइए। अब पैसे के तलाश में घूम रहे हैं, 10 को भी जाएंगे तो कोई न कोई 100-50, 10-20 दे देगा, तो उसी से सामान ले आएगा।
हम जितनी भी फैक्ट्रियों में गए हैं, जो टेक्सटाइल की फैक्ट्रियां हैं या जहां बुनकरों के काम होता है, डाइंग का काम होता है, वो तो कहते हैं कि वो उनकी कोशिश है कि अपने काम करने वालों का बैंक खाता खुलवा के उनको पैसा दे दे।
वो भी कहां हुआ है सर, खाता खुलवाने के लिए तो खाता में कितना जाते हैं तो वहां पैसे नहीं है। गरीब आदमी जाते हैं तो वहाँ लाइन में लगे, वहाँ पैसे नहीं है, सब तो वहाँ घूम के चलाते हैं, चार चार दिन रात के लाइन लगाते हैं, बेड से खाना खा के जाते हैं और लाइन लगाते हैं, 10-20-50 के मिला, फिर बोल दिया कि खाता में पैसे नहीं है, अब क्या करें सर, पैसे के कारण यहाँ गणेश नगर में आधा हो गया है आदमी सर।
सूरत में काम करने आए यूपी और बिहार के लोग नोटबंदी के बाद वापस लौटना चाहते हैं, लोगों से बात कर रहे थे नितिन श्रीवास्तव। और अब समय है समाचार पत्रों की समीक्षा का, हरिता कांडपाल स्टूडियो आ चुकी है। हरिता
जी, सुशील जैसे अभी हम सुन रहे थे कि वो कह रहे थे कि नोटबंदी से लोग आधे हो गए हैं, तो इसी पर बात करते हैं। हिंदुस्तान टाइम्स ने एक कार्टून प्रकाशित किया जिसमें बैंक की अफरा तफरी के बीच अस्त व्यस्त हालत में एक आदमी खड़ा है और उसकी तलाशी लेते हुए कई अधिकारी उसे घेरे हुए हैं और ऊपर लिखा है कि अभी अभी नियम बदल गया है। ये उस RBI के आदेश से जुड़ा हुआ है कि कल कहा गया था कि 5,000 रुपये से ज़्यादा रकम जमा की जाएगी तो सवाल जवाब किए जाएंगे। टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा है कि देश में कई बैंकों की शाखाओं के अधिकारियों ने 5,000 रुपये से ज़्यादा की रकम जमा करने से इनकार कर दिया और उससे कई लोग परेशान हुए। टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक शख्स है उनका बयान छापा है सोशल मीडिया से लेके कि उसने जब बैंक में ये बताया कि वो प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री ने जो कहा था कि 30 दिसंबर तक जो है पुराने नोट जमा किए जा सकेंगे उसी विश्वास में था और उसी लिए वो रुका हुआ था और इसीलिए उसने जमा नहीं किए थे, तो इस पर भी उसे सवाल किए गए। और जनसत्ता ने लिखा है कि राहुल गांधी कांग्रेस उपाध्यक्ष ने कल इस नए नियम पर कहा कि RBI नियम वैसे बदल रही है जैसे कि मोदी अपने कपड़े बदलते हैं। और नोटबंदी से सिर्फ लोग ही परेशान नहीं है, बैंक कर्मी भी परेशान है। जनसत्ता ने लिखा है कि नोटबंदी से परेशान बैंक कर्मियों ने आंदोलन की चेतावनी दी है, हड़ताल पर जाने की जो है उन्होंने धमकी दी है बैंक कर्मियों ने। इसके अलावा जब बात करते हैं, इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा है कि 200 पार्टियां ऐसी हैं जो सिर्फ कागज़ों पर ही हैं और चुनाव आयोग को शक है कि मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इनका इस्तेमाल हो रहा है।
जी, समाचार पत्रों की समीक्षा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद हरिता कांडपाल। आज ही के दिन 1991 में पूर्व सोवियत संघ का विघटन हुआ था और कई छोटे छोटे देशों का जन्म। जिस दिन ये घोषणा हुई थी, मिखाइल गर्वाचौव सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे जो नहीं चाहते थे कि सोवियत गणराज्य का विघटन हो, लेकिन उनकी तमाम कोशिशों के बावजूद सोवियत रूस विघटित हो गया। आज गर्वाचौव 85 साल के हो गए हैं, लेकिन उनके जहन में वो दौर अब भी ताज़ा है। BBC संवाददाता स्टीव रोजनबर्ग ने उनसे एक खास मुलाकात की और ये रिपोर्ट तैयार की जिसे सुना रहे हैं अमरेश द्विवेदी।
Я прекращаю свою деятельность на посту президента СССР.
सोवियत संघ के तत्कालीन राष्ट्रपति मिखाइल गोर्वाचेव टीवी पर कह रहे थे कि सोवियत संघ अब अस्तित्व में नहीं रहा। दिसंबर 1991 में राष्ट्रपति मिखाइल गोर्वाचेव सोवियत संघ को विखंडन से बचाने की कोशिश कर रहे थे और उधर रूस, बेलारूस और यूक्रेन के नेता सोवियत संघ का अस्तित्व मिटाने के लिए बैठकें कर रहे थे।
ये हमारे साथ पीठ पीछे धोखा था, मेरे साथ विश्वासघात था। वो लोग जो कुछ कर रहे थे वो सिगरेट की तरह पूरे घर को जलाने जैसा था। उन्होंने अपराध किया था, तख्ता पलट जैसा अपराध।
गोर्वाचेव ने अपने इस्तीफे की घोषणा की और सोवियत झंडा हमेशा के लिए झुका दिया गया। गोर्वाचेव ने शीत युद्ध को खत्म करने में मदद की थी। आज वो मानते हैं कि पश्चिम के देश रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं।
मुझे लगता है कि पश्चिमी मीडिया जिसमें BBC भी शामिल है उसे पुतिन की छवि बिगाड़ने की विशेष हिदायत दी गई है ताकि वो अलग थलग पड़ जाएं। लेकिन हुआ यह है कि इस पूरी प्रक्रिया में उनकी लोकप्रियता 86% तक पहुंच गई है और थोड़े ही दिनों में ये 120% तक हो जाएगी।
पश्चिम में कई लोग मिखाइल गोर्वाचेव को हीरो की तरह देखते हैं। उन्हें पश्चिमी यूरोप को आज़ादी और जर्मनी के एकीकरण को मंजूरी देने वाले शख्स के तौर पर देखा जाता है, लेकिन उनके अपने देश में गोर्वाचेव वो नेता हैं जिसने अपना साम्राज्य गंवा दिया था।
ये थे अमरेश द्विवेदी। और अब कार्यक्रम का अंत करने से पहले सुन लेते हैं मुख्य समाचार।
BBC समाचार। जर्मनी की राजधानी बर्लिन में सोमवार रात हुए हमले की जिम्मेदारी चरमपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट ने ली है। बर्लिन हमले के बाद जर्मनी ब्रिटेन और अमेरिका में कई शहरों में सुरक्षा बढ़ाई गई। मेक्सिको में पटाखों के सबसे लोकप्रिय बाजार में सिलसिलेवार हुए कई धमाकों में कम से कम 26 लोगों की मौत हुई है और 60 लोग घायल हो गए हैं। पाकिस्तान की संसद के ऊपरी सदन ने 5,000 रुपए के पुराने नोट को बंद करने की सिफारिश की है। बीबीसी समाचार।
मुख्य समाचार सुना रही थी हरिता कांडपाल। इसी के साथ नमस्कार भारत में बस इतना ही। तकनीकी सहयोगी अजीत सारथी के साथ मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।